स्याही बने समंदर चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात चाहे कागज बने गगन, जीनो जान चाहे शब्दों से भर जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए।
ओम शांति। हम सभी भगवान के भाग्यवान बच्चे हैं जो भगवान के महावाक्य डायरेक्ट सुनते हैं, जिस महावाक्य के द्वारा हम आप सभी आत्माएं महान ते महान देव आत्मा बन जाती है। तो 31 दिसंबर की मुरली में बाबा ने इस नए बरस के लिए विशेष होमवर्क दिया था। आप लोगों के पास मुरली पहुंच चुकी होगी, सुना होगा। विशेष होमवर्क था कि इस बरस में ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण अवश्य बनना है, बनना ही है, ये होमवर्क था। तो बाबा ने कहा कि सोचो कि ब्रह्मा बाबा कैसे संपन्न बना, क्या विशेषताएं थी, उन्हीं विशेषताओं को फॉलो करके हम आप सबको भी ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप के हर कर्म की विशेषता थी, जिस विशेषता के कारण ही वो नंबर वन आत्मा बना। तो आज उन विशेषताओं को हम आप सुनते हैं और उन्हीं विशेषताओं को प्रैक्टिकल जीवन में लाना ही ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाप के संकल्प की विशेषता क्या थी? संकल्प तो हमारे आप भी चलते, लेकिन ब्रह्मा बाप के संकल्प की विशेषता थी हर एक बच्चे को उमंग उत्साह में लाना, हर एक बच्चे को उमंग उत्साह में लाना। ऐसे ही वृत्ति की विशेषता थी, अपने वृत्ति के द्वारा हर एक बच्चे में उमंग उत्साह भरना। संकल्प में था उमंग उत्साह में लाना और वृत्ति में था उमंग उत्साह भरना। लाना और भरना अंतर है। उमंग उत्साह में लाना अर्थात उसकी महिमा करना, लेकिन भरना अर्थात अपने वाइब्रेशंस के द्वारा उसके अंदर बल भरना, प्रैक्टिकल एक्शन में आना, जिससे उस बच्चे के अंदर भी वो उमंग भर जाए। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के वाणी की विशेषता क्या थी? बोलते हम आप भी हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के वाणी की विशेषता थी कि ब्रह्मा बाबा के हर बोल महान बनाने वाले, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले बोल, निर्बल आत्मा को उड़ती कला के विधि के द्वारा उड़ाने वाले बोल, सेवा के योग्य बनाने वाले बोल, मधुर अनमोल और युक्ति युक्त थे। इस बरस में इन बातों पर अटेंशन देना ही है। वैसे भी बाबा ने इस मुरली में वाणी पर बहुत ज्यादा ध्यान खिंचवाया है, तो ब्रह्मा बाबा के इस बोल पर अटेंशन दो। अगर यह बोल जैसे ब्रह्मा बाबा के थे अगर मुंह से नहीं निकल रहे हैं, तो उस बोल को परिवर्तन करो। कई बार तो ब्राह्मणों के बोल ऐसे निकल जाते हैं कि जो दूसरे की अवस्था और डाउन हो जाती, ऊपर चढ़ाने के बजाय और डाउन कर देते। थोड़ा बाबा के शब्दों पे ध्यान दो, ना उम्मीद को उम्मीदवार बनाने वाले, कमजोर को महान बनाने वाले, और अपनी सबकी बोल, जब कोई कमजोर है किसी की कमी देखते हैं तो उसकी कमी और वर्णन करके उसको गिरा देते, अंतर पड़ता है। लेकिन बाबा के बोल का उसकी कमी है, लेकिन उस कमी को परिवर्तन करके महान बना देना, यही तो महान आत्माओं के बोल की महानता है। ऐसे ब्रह्मा बाबा के कर्म की विशेषता क्या थी? कर्म हम आप सभी करते हैं, ब्रह्मा बाबा ने भी कर्म किया, लेकिन कर्म की विशेषता थी कि ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ के हर कर्म के महत्व को समझाने के लिए हर एक बच्चे के साथ हर कर्म में रहकर कर्म योगी बनाया, साथ रहकर कर्म योगी बनाया, सिर्फ डायरेक्शन नहीं दिया, सिर्फ साक्षी होकर नहीं रहे, लेकिन कैसे कर्म करते हुए बाबा की याद में रह सकते हैं, हर कर्म यज्ञ का कितना महान है वो बाबा ने करके सिखाया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर ये सदा रहता था कि कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख मेरे बच्चे करेंगे। अगर हम हर कर्म कर्म योगी बनकर करेंगे तो मुझे देखकर दूसरे भी हर कर्म कर्म योगी बनकर करेंगे। अगर साधारण कर्म को भी ऊंची स्थिति में स्थित रहकर करेंगे तो सब बच्चे भी साधारण से साधारण कर्म में भी अपनी स्थिति को ऊंचा रखेंगे। यह बाबा ने करके सिखाया, क्योंकि यज्ञ में कर्म का महत्व नहीं है लेकिन स्थिति का महत्व है। कर्म चाहे स्पीच देना है, क्लास कराना है, चाहे बर्तन मांजना है, झाड़ू लगाना है, यज्ञ का हर कर्म महान है। अगर कोई झाड़ू लगाते हुए उसकी स्थिति महान है, बाबा की याद में रहकर कर रहा है, लेकिन एक कोई स्पीच दे रहा है उसको बाबा की याद नहीं है, तो झाड़ू लगाने वाले को प्राप्ति ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कर्म का महत्व नहीं, महत्व स्थिति का है। यह बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक बार माउंट आबू में ही बाबा बच्चों को गोबर का उपला बनाना सिखा रहा था, जिसको कोई कंडा कहते हैं या उपला कहते हैं। तो थोड़ी देर बाबा ने सिखाया तो जो अब दादियां हैं, उस समय तो छोटी छोटी बच्चियां ही थी, उन्होंने कहा, बाबा मैं सीख गई, अब आप छोड़ दो, हम बना लेंगे, नहीं तो कोई वीआईपी आ गया और देखेगा तो कहेगा, कहते हैं अपने को ब्रह्मा और कर क्या रहे, इसलिए बाबा ये छोड़ दो। तो बाबा ने कहा, बच्ची ये तो यज्ञ की सेवा है, आने दो वीआईपी को, वो दृष्टि दूंगा, वो दृष्टि दूंगा कि वो इस धरती से उड़ जाएगा। और रियल में थोड़ी देर में वीआईपी आ गया और बाबा ने तुरंत हाथ धुलाई करके वहीं खड़े हो करके उसको दृष्टि दिया। वो तो देह भान को भूल गया, किस दुनिया में सैर करने लगा। थोड़ी देर में बस आंख से आंसू आंसू, बाबा 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 कहके बाबा के गले में लिपट गया। और जब बाबा उसको विदाई दिया तो उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची देखा मैंने कहा था, आने दो वीआईपी को, वो दृष्टि दूंगा जो उड़ जाएगा। तो देखो बाबा कर्म कितना साधारण कर रहा था, उपला बना रहा था, लेकिन स्थिति महान थी। इसलिए स्थिति महान रखने के लिए कैसा भी छोटा कर्म हो, बाबा ने साथ में रहकर सिखाया, कर्म योगी बनकर दिखाया। ये बाबा के कर्म की विशेषता थी। ऐसे ही बाबा के संबंध संपर्क की विशेषता क्या थी। हम सब बड़े साधारण शब्दों में कह देते हैं, क्या करें, घर का वायुमंडल ही ऐसा है, समाज ही ऐसा है, बाहर बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा के संबद्ध संपर्क की क्या विशेषता थी कि बाबा हर एक के साथ स्वयं को वैसे बना लेता था। अगर छोटा बच्चा होता था तो छोटे बच्चे के साथ बाबा छोटा बच्चा बन करके उसको अपनापन का अनुभव कराता था, बच्चे की महानता का अनुभव कराता था। अगर कोई युवा आ जाए, यूथ आ जाए, तो यूथ के साथ यूथ बन करके उस प्रकार का अनुभवी बन करके यूथ की महानता का महिमा करता था। कोई बुजुर्ग आ जाए तो बुजुर्ग अनुभवी बन करके उस बुजुर्ग की महिमा करता था, जिससे हर एक को ये अनुभव होता था कि जितना बाबा मुझे प्यार करता है, जितना बाबा मुझे स्नेह देता है, मुझे महानता की दृष्टि से देखता है, उतना बाबा किसी को नहीं प्यार करता। ये थी संबंध संपर्क की विशेषता। अपने तो संबंध संपर्क में ऐसा हो जाता, एक दूसरे से बोलते ही नहीं है, ऐसे मुंह फेर लेते। लेकिन ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी और इस विशेषता को लाना है, हर एक की विशेषता को देखो। बच्चे को बाबा होवनहार विश्व कल्याणकारी के रूप से, ये तो महात्माओं से ऊंच हैं, पवित्र हैं, इस दृष्टि से देखता था, इससे उस बच्चे की महानता करता था। यूथ के लिए यही तो देश के कर्णधार हैं, यूथ जग जाए सारी दुनिया जग जाएगी, इनका ब्लड नया है, सब कुछ कर सकते हैं। अरे जो ये बुढ़ा नहीं कर सकता, वो ये यूथ कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को, यूथ को आगे बढ़ाया, सम्मान दिया, बुजुर्ग का इतना सम्मान दिया। अरे बुजुर्ग तो सबसे अनुभवी होते हैं और अनुभवी का तो बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे पेड़ पर पके हुए फल का बहुत महत्व होता है, ऐसे बुजुर्ग का समाज में पेड़ में पके हुए फल के समान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे उनकी महिमा की, जिससे हर एक को अपनेपन का अनुभव हुआ। ऐसे देखो बाबा के देखने की विशेषता क्या थी। हर एक बच्चे की विशेषता को ही देखा, अपने से कंट्रास्ट करके देखो। अगर हर एक बच्चा हर एक की विशेषता ही देखने लगे तो कोई किसी प्रकार की मार्जिन है दूसरी, व्यर्थ की मार्जिन है? नहीं है ना। स्वतः ही मन एकाग्र हो जाएगा, भटकेगा ही नहीं। थोड़ा सा अगर साक्षी होकर अपने से देखो तो 75% से भी ज्यादा आपका मन दूसरे के बारे में ही सोचता है और देखता है, और उसमें भी 60% कमजोरी देखता है और सोचता है। ऐसे बाबा की जो देखने की विशेषता थी, हर एक में विशेषता ही देखा, गुण ही देखा। ऐसे बाबा के सोचने की विशेषता क्या थी? सोच तो हमारा सबका भी चलता है। बाबा के सोच की विशेषता थी कि बाबा जानता था कि यह बच्चा माला का लास्ट मड़का है, लास्ट दाना है, जानते हुए फिर भी उस बच्चे के लिए शुभ ही सोचा, बच्चा आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, सदा शुभ सोचा। हम आप सब तो कभी कभी जानते हैं ये देवी देवता बनेंगे, कल्प पहले यही बने थे, जानते हुए फिर भी वो भावना नहीं बिठा पाते। पक्का सर्टन है यही देवी देवता बनेंगे, लेकिन बाबा के अंदर वो भावना थी। ऐसे बाबा के संकल्प अर्थात मन की विशेषता, मन को मन मना भाव के विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया, अर्थात सफलता मूरत बनाया। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर संकल्प सफल हो, सिद्धि स्वरूप हो, तो दो बात अपना लो। एक, हर संकल्प में बाबा की याद हो। दूसरा, शुभ भावना हो। अगर आपके संकल्प में यह दो बात है, बाबा की एक्यूरेट याद और शुभ भावना, तो वो संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। ऐसे बाबा ने इस तन को भी भगवान को दे दिया, तन पर भी अपना अधिकार नहीं रखा। हम आप भगवान को तो नहीं दे सकते, अर्थात शिव बाबा तो इस तन में नहीं प्रवेश करेगा, लेकिन अगर हम आप सभी बच्चे बाबा के श्रीमत प्रमाण इस तन को अगर हम सेवा में लगाते हैं, तन अर्थात हर कर्म इंद्री सेवा में लगाते हैं, श्रीमत प्रमाण इसको कहा जाता है, तन को भगवान के ऊपर समर्पित कर देना। ऐसे बुद्धि को मैंपन की बुद्धि, देहभान की बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दिया। धन को भी बिना भविष्य चिंता के सब बाबा को अर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि निश्चय था ये देना देना नहीं, लेकिन पदम गुना लेना है। इसलिए ब्रह्मा बाबा का तन मन और बुद्धि निर्मल शांत शीतल और सुखदायी बन गई। इन बातों को फॉलो करना ही फॉलो फादर करना है। ये सारे दिन की दिनचर्या में है, लेकिन क्यों नहीं ब्रह्मा बाप को फॉलो कर पाते? फॉलो न कर पाने का एक छोटा सा कारण है, वो कारण ये है कि फॉलो कोई किसी को तब करता है या उसका कहना कोई तब मानता है जब उससे स्नेह होता है, प्यार होता है। और स्नेह या प्यार कब होता है? जब उससे प्राप्ति होती है। बिना प्राप्ति के किसी के साथ कोई स्नेह नहीं होता है। चलो बाबा के पास, तो ब्रह्मा बाबा से प्यार क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? इसका कारण है कि ब्रह्मा बाबा से प्राप्ति क्या है ये अनुभव न होने के कारण या इस बात का ज्ञान न होने के कारण ब्रह्मा बाप से स्नेह जुट नहीं पा रहा है। और जब तक ब्रह्मा बाबा से स्नेह नहीं जुटेगा तब तक फॉलो करना मुश्किल है। ब्रह्मा से स्नेह इसलिए नहीं जुटा क्योंकि एक तो मुझे प्राप्ति क्या है यह ज्ञान नहीं, दूसरी बात हम सबने जब योग सीखा तो योग में भी मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, आत्मा और परमात्मा तक रखा। ब्रह्मा के थ्रू नहीं दिया। तीसरी बात, हम सब मुरली में कई बार ये सुनते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता है, इसलिए इससे कुछ मिलता नहीं है, इसका फोटो भी नहीं रखो। तो जो ये बातें सुनी है कि इसका फोटो भी नहीं रखो, अलौकिक बाप है, ये भी शिव बाबा से ही लेता है, इससे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी बातें जो सुनी है, इन तीन बातों के कारण ब्रह्मा बाबा से स्नेह नहीं जुट पा रहा है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा जो ये शब्द बोलता था, इसका फोटो भी नहीं रखो, ये शब्द आप लोग साकार मुरली में सुनते होंगे, अव्यक्त मुरली में ये शब्द नहीं है। अव्यक्त मुरली में तो दो साल पहले इसी 18 जनवरी की मुरली चलाई थी तो बाप दादा ने कहा था कि आस बाबा चारों तरफ सैर पर निकला, सबके घर पे भी चक्कर लगाया, सेंटरों पर चक्कर लगाया, तो क्या देखा बाप दादा ने कि हर एक के घर में ब्रह्मा बाबा का फोटो रखा था। तो शिव बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा बड़ा फोटो रखो। अब देखो अव्यक्त मुरली में कह रहा है बड़ा बड़ा फोटो रखो, और साकार मुरली में कह रहा है इसका फोटो ही नहीं रखो। तो जो साकार मुरलियों में ये सुना, इसके कारण ब्रह्मा बाबा से सोचते हैं कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन ये शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का फोटो ना रखो क्यों कहा, इसका कारण था कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान था, फल ब्रह्मा का शरीर बुढ़ा था लेकिन शिव बाबा तो बैठा था। तो शिव बाबा की रचना श्री कृष्ण, उसमें इतनी आकर्षण है कि अगर अभी श्री कृष्ण आ जाए तो सब उसको पकड़ लेंगे। तो जो श्री कृष्ण का रचता परमात्मा है वो जहां बैठा होगा, कितनी कशिश होती होगी, कितनी खेंच होती होगी, इसमें साकार बाबा के समय के कोई है कोई साकार बाबा के समय के नहीं। अच्छा, अनुभवी होंगे कि जैसे, अच्छा देखो बैठी है दादी, ये अपनी निर्मल शांता दादी की बहन है, हाँ बैठी है, फिर बाद में ले आना थोड़ा स्टेज पर। तो बाबा के सामने जैसे कोई बच्चा जाता था, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, जैसे बाबा के सामने पहुंचता था और बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ, ऐसे दो तीन शब्द मीठे बच्चे बोला, और वो आत्मा चाहे कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, जैसे कोई चुंबक खींच लेता है, बस बाबा के गोद में समा जाती थी, क्योंकि चुंबक बैठा था। तो शरीर तो ब्रह्मा का था, शिव बाबा तो देखने में नहीं आता था, इसलिए शिव बाबा कहता था कहीं किसी का बुद्धि योग ब्रह्मा के नाम रूप में न फंस जाए। खींचता शिव बाबा था लेकिन आंखों से तो इसका शरीर दिखाई पड़ता था, इसलिए कहता था इसका फोटो नहीं रखो। साकार मुरली में सुना होगा, बाबा भी कहता, ब्रह्मा बाबा जब इसकी गोद में आओ तो शिव बाबा को याद करके गोद में आओ, नहीं तो पाप लगेगा। तो ब्रह्मा बाबा से बहुत प्राप्तियां हैं, उस प्राप्तियों का अनुभव न होने के कारण ब्रह्मा से स्नेह जुटता नहीं। आज आपको बताते हैं कि ब्रह्मा से प्राप्ति क्या क्या है और शिव बाबा से प्राप्ति क्या है, कंट्रास्ट में बता रहे, कि ब्रह्मा से क्या मिलता है और शिव बाबा से क्या मिलता है, क्योंकि प्राप्तियों की नॉलेज सनेक जरूर जुटाएगा। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों पिता हैं, शिव बाबा भी पिता है और ब्रह्मा बाबा भी पिता है। शिव बाबा आत्माओं का पिता और ब्रह्मा बाबा ब्राह्मणों का पिता, दोनों पिता हैं। आत्मा को शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, आत्मा को शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा मिलता है और ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से क्या मिलता है, ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से क्या मिलता है, बाप बाप माना वर्षा। जब ब्राह्मणों का बाप है, ब्राह्मण भी अलौकिक, बाप भी अलौकिक, तो वर्षा भी तो अलौकिक होगा ना, लेकिन मिलता जरूर है। तो ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा, ये ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से मिलता है। संपन्न संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्ष ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, कैसे संपन्न बने, संपूर्ण बने, श्रेष्ठ बने, हर कर्म कैसे चरित्र बने, ये हमें ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया, वही मुझे करना है। वर्षा माना जन्म सिद्ध अधिकार, तो ब्रह्मा ने जो किया वो ब्राह्मणों को करना जन्म सिद्ध अधिकार है, करना ही है, इसी को वर्षा कहा जाता है। इसके बाद देखो, शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा क्या है, बोलो बहने शक्तियां क्या है जी? अच्छा, शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है, देखना ज्ञानी बड़ा होता है या अनुभवी बड़ा होता है, सोचो। देखो, शिव बाबा जिस समय धरती पर आया, आते ही पहले दिन ही ये ज्ञान दिया कि तुम तो हो ही आत्मा, ये शरीर तो तुम्हारा वस्त्र है, जब चाहे तो धारण करो, जब चाहे तब उतार दो। अब शिव बाबा को ये शब्द कहना तो बहुत सहज है, क्यों? क्योंकि कभी शरीर लेता ही नहीं है, लेकिन इस देह भान को छोड़ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये ब्रह्मा जानता है। शिव बाबा जानता है मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है ये शिव बाबा को पता नहीं, क्योंकि करता ही नहीं कभी, तो अनुभवी है। इसके बाद देखो, शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा, बोलो पांडव जी, ब्रह्मा बाबा, देखो शिव बाबा प्यार का सागर है लेकिन प्यार देता कैसे है? नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सागर है तो क्यों नंबर वार देता है? कोई कमी पड़ जाएगी क्या? लेकिन नंबर वार इसलिए देता है कि जिस बच्चे का जैसा पुरुषार्थ वैसा उसको बाप का प्यार, यही है ना। तो शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा रूहानी ममता की मूरत है, रूहानी ममता की मूरत। तो जहां ममता है वहां कमी नहीं दिखाई पड़ती, जहां ममता है वहां कमी नहीं दिखाई पड़ती। इसके बाद देखो, शिव बाबा बरदाता है, बरदान देता है, भोलानाथ भंडारी है, और ब्रह्मा बाबा, ये तो बहुत सहज है, ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है, भाग्य बांटने का काम किसका है? ब्रह्मा का है। गायन भी है ना कि जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो क्या सोए हुए थे क्या? तो शिव बाबा बरदाता है और ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है। इस पर बहुत सुंदर है कि अमृत बेले के समय शिव बाबा क्या करता है और ब्रह्मा बाबा क्या करता है। अमृत बेले के समय ब्रह्मा बाबा जिन बच्चों का स्नेह ब्रह्मा बाबा से है, ऐसे बच्चों को बाबा स्नेह के आधार से बहुत बड़ी लंबी भाग्य की रेखा खींचता है। उस समय बच्चे स्नेह के आधार से ब्रह्मा बाबा से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। उस समय हिसाब किताब नहीं है। और शिव बाबा अमृत बेले, शिव बाबा भोलेनाथ भगवान के रूप में होता है। उस समय शिव बाबा से आप अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। उस समय भगवान भोलेनाथ के रूप में है, हिसाब किताब के रूप में नहीं। शिव बाबा से अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, भोलानाथ का रूप। और ब्रह्मा बाबा से स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। इसके बाद देखो, शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा मां है, ब्रह्मा, मां और बाप में अंतर होता है, होता या नहीं? होता है ना। ब्रह्मा मां है, शिव बाबा बाप है, मां हमेशा बच्चों का ही पक्ष लेती है। लौकिक में भी माताएं अनुभवी होंगी कि घर में बच्चा है, सारा दिन मां को तंग करता है, लेकिन जब बाप शाम को घर आता है तो मां उस बच्चे को बाप के आगे करके बच्चे की महिमा करती है। मारा बच्चा बड़ा अच्छा है, ऐसा है, सारा दिन तंग किया वो भूल गई, लेकिन वहां बाप के आगे बच्चे की महिमा करती। तो बाप के दिल पर चढ़ाने का काम किसका होता है? मां का होता है। तभी शिव बाबा कहता है, जो ब्रह्मा के दिल से उतरा वो शिव बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकता। ब्रह्मा मां है, बच्चों का पक्ष लेती है, इसका मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बताया है कि जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आपस में रूरिहान होती है तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहता है कि बाबा आप मुझे चाबी दे दो, मैं अभी बच्चों को संपूर्ण बना दूं, मुझे बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती है। अब देखो बच्चे तो शिव के भी हैं और ब्रह्मा के भी हैं, लेकिन संकल्प ब्रह्मा को ही आ रहा है। क्यों? मां है और अनुभवी है। इसके बाद देखो, बाबा ने कहा था कि जैसे लौकिक में मां सुबह सुबह बच्चे को खिला पिला करके स्कूल भेजती है तो कुछ दे भी देती है, जब तक बच्चा वापस आए तब तक बच्चे को थोड़ा समर्थ बना करके भेजती है। ऐसे, ये बहुत अंडरलाइन शब्द है ये, ऐसे ही जिन बच्चों का स्नेह ब्रह्मा मां से है, ऐसे बच्चों को ब्रह्मा मां अमृत बेले वतन में इमर्ज करके इष्ट्रा सकाश देती है, इष्ट्रा बल भरती है, जिससे वो बच्चा समर्थ बन जाता है, माया जीत बनने की ताकत आ जाती है। तो ये ब्रह्मा मां किस बच्चे को ताकत भरती है? जिस बच्चे का ब्रह्मा मां से स्नेह है, ऐसे बच्चे को ब्रह्मा मां वतन में इमर्ज करके इष्ट्रा शक्ति भरती है। कई बच्चे कहते हैं हमारा शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, ब्रह्मा भी शिव से लेता, हम भी शिव बाबा से डायरेक्ट ले लेंगे। ऐसे बच्चों को शिव बाबा कहता है, अगर तुम्हारा ब्रह्मा से कनेक्शन ही नहीं तो तुम्हारा देवता बनने से भी कनेक्शन नहीं, तुम देवता बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता है, आत्मा सो देवता नहीं है। आत्मा तो संसार की सभी आत्माएं शिव बाबा की संतान है, सब देवता नहीं बनेंगी, लेकिन ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। इसके बाद बाबा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था, जैसे आजकल बैंक में आपने देखा होगा लॉकर्स होता है, जानते होंगे लॉकर्स, एक तिजोरी होती है उसमें आप अपना खजाना रखते हो, उस खजाने को बैंक वाले को भी नहीं पता है, सिर्फ आपको पता होता है। लेकिन उस लॉकर्स की विशेषता होती है कि उसकी दो चाबी होती है, एक चाबी आपके पास रहती है, एक चाबी बैंक वाले के पास रहती है। अगर आप चाहो कि अपना खजाना जब चाहे तो निकाल कर ले आओ, जब तक बैंक वाला चाबी नहीं देगा तब तक नहीं निकल सकता है, दोनों चाबी आवश्यक है। ऐसे ही शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना बर्थ राइट है, चाबी भी आपके पास है, वो चाबी है मेरा बाबा। लेकिन जब तक ब्रह्मा की दूसरी चाबी नहीं लगेगी तब तक शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना होते हुए भी आपको कुछ मिल नहीं सकता। अब भी अव्यक्त रूप में अब भी शिव बाबा मुरली ब्रह्मा के थ्रू ही सुना रहा है। जो 18 तारीख को मुरली सुनेंगे, निमित्त गुलजार दादी का रथ है, लेकिन सुना अब भी ब्रह्मा के द्वारा रहा है। कैसे? अपने पास दो मुरली, एक साकार एक अव्यक्त। तो जब ब्रह्मा साकार था तब शिव बाबा ब्रह्मा की साकार भाषा में बोलता था, अब ब्रह्मा अव्यक्त है तो अब मुरली अव्यक्त चलती है, अब भी ब्रह्मा के थ्रू दे रहा है। इसलिए जो कुछ भी शिव बाबा दे रहा है ब्रह्मा के थ्रू, तो देखा कितनी ब्रह्मा से प्राप्तियां हैं। इन प्राप्ति को स्मृति में लाओ तो ब्रह्मा से आपका स्नेह जुटेगा। स्नेह का मतलब क्या? कई सोचते क्या ब्रह्मा को याद करें? नहीं, स्नेह का मतलब है जैसे लौकिक में कई देखा होगा किसी का बाप बहुत अच्छा होता है, बच्चा भी आज्ञाकारी होता है, अगर बाप शरीर छोड़ देता है तो बच्चा बाप के फोटो के आगे जाकर रोज यही कहता है, पिताजी आपने जो मेरे लिए डायरेक्शन दिया है या आपकी जो इच्छा थी वो हम अवश्य पूरी करेंगे, उसी प्रमाण हम चलेंगे। इसी को कहा जाता है बच्चे का स्नेह बाप के प्रति। तो ब्रह्मा बाबा के प्रति बच्चों का स्नेह अर्थात ब्रह्मा बाप के कदम पिछाड़ी कदम रखना, इसी को कहा जाता है ब्रह्मा बाप से स्नेह। तो स्नेह जुटने का आधार ब्रह्मा से प्राप्ति, और जब स्नेह जुटेगा तो जो बातें आपको शुरू में बताई ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं, उन विशेषताओं को प्रैक्टिकल जीवन में ला सकेंगे, तभी आप ब्रह्मा बाप को फॉलो करके जो इस बरस के लिए होमवर्क मिला है कि ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, वो अवश्य बन जाएंगे, बनना ही है। अच्छा, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद रामलोचन भाई जी, आपने आज हम सभी को बहुत सरल शब्दों में ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं सुनाई। आपने एक पाठ पक्का कराया बाबा का, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख सभी करेंगे। ओम शांति।